आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। मोहन चरण मांझी ने उड़ीसा के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के वजीर आला बन गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल इटली के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कुवैत में आग के एक हादसे में कम से कम 40 अफराद जान बहक हो गए। वजीर आजम और वजीर खारजा ने अफसोस का इजहार किया है। भारत के महकमा मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के तास, बिहार और झारखंड के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई की है। और ICC मर्दों के T20 आलमी कप में अमरीका और भारत के दरमियान खेल जारी है। अब खबरें तफसील से। मोहन चरण मांझी को आज शाम भुवनेश्वर के जनता मैदान में उड़ीसा के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। उनके हमरा दो नायब वुजरा आला कनक वर्धन सिंह देव, प्रवती परेडा और कई दीगर रहनुमाओं की हलफबरदारी भी अमल में आई। रियासत में पहली मर्तबा बीजेपी अपने बलबूते पर सरकार तश्कील दे रही है और इस तरह नवीन पटनायक की क्यादत वाली बीजू जनता दल की 24 साल के अरसे से चली आ रही हुक्मरानी अपने इख्तिताम को पहुंची। 52 साल मांझी को कल शाम बीजेपी कानून साज पार्टी का इत्तेफाक राय से लीडर मुंतखब किया गया। इस मौके पर बीजेपी के मरकजी मुशाहिदीन, मरकजी वुजरा राजनाथ सिंह और भूपेन्द्र यादव मौजूद थे। तेलुगु देशम पार्टी के सरबरा चंद्रबाबू नायडू को आज कृष्णा जिले के केसरापल्ली में आंध्र प्रदेश के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और एनडीए के दीगर रहनुमाओं ने इस तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल इटली के जजीरा नुमा खित्ते अपुलिया के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो इस माह की 14 तारीख को मुनाकिद होने वाली G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगे। आज सुपहर नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि भारत को G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में आउटरीच मुल्क के तौर पर मदऊ किया गया है। उन्होंने कहा कि लगातार तीसरी मुद्दत के लिए वजीर आजम का ओहदा संभालने के बाद बैरून मुल्क का उनका यह पहला दौरा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस दौरे से G7 में भारत और जनूबी ममालिक के अहमियत के हामिल मामलों पर दीगर आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत करने का एक अहम मौका फराहम होगा। भारत 11वीं मरतबा G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहा है, जबकि वजीर आजम मुसलसल 5वीं मरतबा इसमें हिस्सा लेंगे। 14 जून को वजीर आजम आउटरीच इजलास में हिस्सा लेंगे। तवक्को है कि चोटी कॉन्फ्रेंस से अलहदा वजीर आजम मोदी जैसे G7 के रहनुमाओं से दो तरफा बातचीत भी करेंगे। जनाब मोदी इटली की अपनी हममनसब जॉर्जिया मेलानी से भी दो तरफा मीटिंग करेंगे। दोनों वज़ीरे आज़म इससे पहले पिछले बरस अबूज़ेबी में COP28 चोटी मीटिंग के दौरान मिले थे। एक सवाल का जवाब देते हुए खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि भारत स्विट्जरलैंड में होने वाली यूक्रेन अमन चोटी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेगा। हमारे नामानिकार की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड की मेजबानी में इस माह होने वाली यूक्रेन अमन चोटी कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 90 ममालिक हिस्सा लेंगे। 18वीं लोकसभा का पहला इजलास इस माह की 24 तारीख को शुरू होगा। इजलास के दौरान 9 मुंतखबा मेंबरान की हलफ बरदारी और तौसीख नीज स्पीकर का इंतखाब होगा। इस इजलास में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का लोकसभा और राज्यसभा से मुश्तरका इजलास से खिताब होगा और उनके खिताब पर बहस भी की जाएगी। राज्यसभा का 264वां इजलास इस माह की 27 तारीख को होगा। अगले माह की 3 तारीख को पार्लियामेंट का इजलास इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ये मालूमात पार्लियामानी उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया के एक पोस्ट में फराहम की। जनाब रिजिजू ने कहा कि मुल्क के अवाम ने फैसला कर लिया है और अब ये अरकान पार्लियामेंट का फर्ज है कि वो मुल्क की खिदमत करें। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय अवाम की उम्मीदों और उमंगों को पूरा करने और उनसे वाबस्ता उमूर पर बातचीत करने और उसकी तकमील के लिए पार्लियामेंट एक मुनासिब प्लेटफार्म है। भारतीय फौज ने आज एक मुल्कगीर मोटरसाइकिल मुहिम का आगाज किया है। यह सफर 1999 की कारगिल जंग में पाकिस्तान पर भारत की फतह की 25वीं सालगिरह मनाने का है। वजारत दिफा ने कहा है कि यह मुहिम मुल्क के बहादुर सिपाहियों की नुमाया खिदमत और उनके विरसे को नुमाया करती हैं। आठ आठ मोटरसाइकिल सवारों की तीन टीमों ने मुल्क के तीन कोनों से यह तारीखी सफर शुरू किया है। इन मकामात में आसाम में दंजान, गुजरात में द्वारका और तमिलनाडु में धनुषकोडी शामिल हैं। ये मोटरसाइकिल सवार मुतनव्वो खित्तों और पुरखतर रास्तों पर सफर करेंगे, जो मुसल्ला अफवाज के इत्तेहाद और मजबूती की अलामत हैं। वजारत ने कहा कि मोटरसाइकिल सवार करगिल जंग के जांबाजों, साबिक फौजियों और वीर नारियों से मुलाकात करेंगे, जो उनके रास्तों पर मुख्तलिफ मकामात पर रिहाइश पजीर हैं। कुवैत के मंगाफ शहर में एक छह मंजिला इमारत में लगी तबाहकुन आग में खबर है कि 40 से ज्यादा अफराद जहां बहक हो गए, जबकि दर्जनों जख्मी हैं। इस इमारत में माइग्रेंट वर्कर रिहाइश पजीर थे। हुक्काम ने खबर दी है कि यह आग एक मतबख से शुरू हुई और तेजी के साथ पूरी इमारत में फैल गई। जहां बहक होने वालों में केरला के रहने वाले पांच अफराद समेत 10 भारतीय बाशिंदे शामिल हैं। इस इमारत में तकरीबन 195 मजदूर रिहाइश पजीर थे, जिनमें से बहुत से केरला और तमिलनाडु के थे। ये इमारत मलयालम के कारोबारी केजी इब्राहिम की जेर क्यादत एक कंपनी एनबीटीसी ग्रुप की मिल्कियत है। वजीर आजम नरेन्द्र मोदी ने कुवैत शहर में आग के अलमिये पर इजहार गम किया है। अपने पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि उनकी हमदर्दी उन सब अफराद के साथ है जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है। उन्होंने जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कुवैत शहर में तबाहकुन आग के हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है, जिसमें खबर है कि 40 से ज्यादा अफराद जहां बहक हुए हैं, जबकि 50 से ज्यादा अफराद को अस्पताल में दाखिल किया गया है। जनाब जयशंकर ने मुतासर अफराद के कुनबों के साथ इजहार ताजियत किया है और जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की है। इसी दौरान कुवैत में भारत के सफीर आदर्श सवाईका ने इस हादसे में जख्मी होने वाले भारतीयों से मिलने के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों का दौरा किया। सिफारतखाने ने एक हंगामी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है 00965655052। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर सिफारतखाने ने मुतासर अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करने के अपने अज़्म का इरादा भी किया है। तमिलनाडु सरकार ने उन भारतीय बाशिंदों की मदद करने के लिए एक हेल्पलाइन कायम की है जिन्हें कुवैत में मदद की जरूरत है। वजीर आला एम के स्टालिन ने रियासत की बैरून मुल्क बहबूद की वजारत से उन अफराद की हर मुमकिन मदद करने के लिए कहा है जो आग के हादसे में मुतासर हुए हैं। महकमे ने कुवैत में भारतीय सिफारतखाने से मुतासर खानदानों से मुतालिक तफसीलात फराहम करने के साथ मदद मांगी है। हेल्पलाइन के फोन नंबर हैं 9180030739793 और 9180609009000। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। टेक्नोलॉजी का भारतीय इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली भारत में अपने दिल्ली कैंपस और मुत्तहिदा अरब अमारात में अबूजबी कैंपस में दाखिले के लिए 15 जून को उन तमाम उम्मीदवारों के लिए एक ओपन हाउस इजलास मुनक्किद करेगा जिन्होंने जेईई एडवांस 2024 के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। एक बयान में आईआईटी दिल्ली ने कहा कि यह तकरीब भारत में दिल्ली कैंपस और मुत्तहिदा अरब अमारात में अबूजबी कैंपस दोनों में मौके की जस्तजू करने का एक गेटवे है। बयान में मजीद कहा गया है कि दोनों कैंपस के फैकल्टी अराकीन उम्मीदवारों के सवालों के जवाब देने के लिए दस्तयाब होंगे। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले के हीरानगर सेक्टर के सैदा सोहल गांव में जारी कार्रवाई के दौरान आज एक और दहशतगर्द हलाक कर दिया गया। इसके साथ हलाक होने वालों की तादाद 3 हो गई है। आकाशवाणी के जम्मू नुमाइंदे ने खबर दी है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने कार्रवाई में एक और दहशतगर्द को हलाक कर दिया, जो गांव में दहशतगर्दों के जरिए फायरिंग शुरू करने के बाद गुज़िश्ता शाम देर गए शुरू की गई थी। जल्द ही सिक्योरिटी फोर्सेज गांव पहुंच गए और दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया, जिसमें एक दहशतगर्द हलाक हो गया जबकि सीआरपीएफ का एक जवान जख्मी है। अलबत्ता जख्मी सीआरपीएफ का जवान आज सुबह जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। जम्मू कठुआ सांबा रेंज के डीआईजी पुलिस और एसएसपी कठुआ उस वक्त बाल बाल बच गए जब दहशतगर्दी मुखालिफ जारी कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों ने उनकी गाड़ियों पर गोलियों की बौछार कर दी। इन दो पुलिस अफसरों के काफिले पर उस वक्त हमला किया गया जब एक रूपोश दहशतगर्द ने उस पर 2 दर्जन से ज्यादा राउंड फायर किए। अलबत्ता दोनों अफसरान में से किसी को भी या अमले के किसी फर्द को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लद्दाख में जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हाईकोर्ट के जज पुनीत गुप्ता ने करगिल के जंस्कार में ई सेवा केंद्र का इफ्तिताह किया और मालूमाती हब बुक बैंक नीज रीडिंग रूम का ई इफ्तिताबी किया। ई सेवा केंद्र लोगों को भारत की किसी भी अदालत में चल रहे मुकदमात की मालूमात फराहम करता है, जिनमें केस की सूरत हाल, अगली तारीखें और अपलोड करदा अहकामात शामिल हैं। कानूनी चारोजुई करने वाले और वकला ई सेवा केंद्र से फैसले की मुसद्दका कॉपियां भी हासिल कर सकते हैं। इंसानी हकूक के कौमी कमीशन NHRC ने मरकज रियासती सरकारों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के इंतजामिया को एक एडवाइजरी जारी की है कि वो बेवाओं की बहबूद और उनके इंसानी हकूक के तहफ्फुज को यकीनी बनाएं। कमीशन ने इस बात को यकीनी बनाने की सलाह दी है कि बेवाओं के लिए बहबूद की स्कीमों के फवायद एक वाहिद विंडो निजाम के जरिए उन तक पहुंचे। एडवाइजरी में उन 10 कलीदी शोबों पर तवज्जो मरकूज की गई है, जिनमें उनके लिए पनाह के घरों की फरोख और देखभाल, जायदाद में बराबरी की रसाई, इस्तेहसाल से तहफ्फुज, महारत की फरोख की गुंजाइश, आसान बैंककारी तक रसाई और माली आजादी नीज सेहत देखभाल तक की रसाई शामिल हैं। कमीशन ने कहा कि कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को खुराक, पनागाहों, हुरमत और जायदाद के तहफ्फुज से मुतालिक बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों के निफाज के लिए जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। आज बच्चा मजदूरी के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल मनाया जाता है, जिसका मकसद हर तरह की बच्चा मजदूरी को खत्म करने के बारे में बेदारी पैदा करना और इस जिम्न में कोशिश करने की तरगीब देना है। अक़वामे मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 16 करोड़ बच्चे बच्चा मजदूरी की लानत के शिकार हैं, जो उन्हें तालीम हासिल करने के अपने हकूक से महरूम करती है और उनकी बहबूद और मुस्तकबिल के लिए खतरा है। बच्चा मजदूरी के खिलाफ आलमी दिन के लिए इस साल का मौजू है हमें अपने अजाइम पर काम करना चाहिए, बच्चा मजदूरी का खात्मा करना। अक़वामे मुत्तहिदा इंक्वायरी कमीशन के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई इसराइल हमास जंग के पहले माह के दौरान इसराइल और हमास दोनों ने जंगी जराइम और बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियां की हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों से मुतालिक एक रिपोर्ट और इसराइल की जवाबी फौजी कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट के जायजे से ये मालूमात फराहम हुई है। इसराइल ने कमीशन से तआवुन करने से इनकार कर दिया है और इंक्वायरी कमीशन को जानिबदार करार देते हुए इन इल्जामात को मुस्तरद किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने फाकाकशी पर मजबूर करने, कत्ल करने, इज्तिमाई सजाएं देने और आम शहरियों पर इरादतन हमलों जैसे जुर्म अंजाम दिए हैं, जबकि हमास की फौजी शाख व दीगर मुसल्ला फिलिस्तीनी ग्रुप ने जानबूझकर हलाकतें करने और शहरियों के साथ बदसलूकी करने और यरगमाल बनाने जैसे जराइम के मुर्तकिब पाए गए हैं। हमास की फौजी शाख के जरिए इन इल्जामात से इनकार के बावजूद रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूक इंसानी के माहिरीन ने केसेस के दस्तावेजात तैयार किए हैं, जो एक बड़े मौसीकी फेस्टिवल की जगह के नजदीक मर्द और खवातीन के खिलाफ तशद्दुद, एक फौजी चौकी और कई यहूदी बस्तियों पर हमले की तरफ इशारा करते हैं। इस रिपोर्ट को अक़वामे मुत्तहिदा हुकूक इंसानी काउंसिल में अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। भारतीय महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मगरबी बंगाल में गंगा के ताप के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी रहने का इम्कान है। भारत के महकमा मौसमियात ने शुमाली रियासतों और ओडिशा के कुछ इलाकों में भी शदीद गर्मी जारी रहने की पेशगोई की है। उसने मजीद कहा है कि अगले 3 रोज के दौरान मशरकी भारत में ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में कोई नुमाया कमी नहीं आएगी। दूसरी तरफ जुनूब मगरबी मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, पूरे तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आज मजीद आगे बढ़ गया है। IMD ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान जैली हिमालयी मगरबी बंगाल, सिक्किम और शुमाल मशरकी भारत में शदीद से बहुत ज्यादा शदीद बारिश की भी पेशगोई की है। और ICC मर्दों के T20 आलमी कप क्रिकेट में न्यूयॉर्क के नसाओ काउंटी बैनुल अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूयॉर्क के दरमियान मैच जारी है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। आखिरी इत्तला मिलने तक न्यूयॉर्क ने 17 ओवर्स में 6 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मोहन चरण मांझी ने ओडिशा के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। एन चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के वजीर आला बन गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल इटली के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। कुवैत में आग के एक हादसे में कम से कम 40 अफराद जान बहक हो गए। वजीर आजम और वजीर खारजा ने अफसोस का इजहार किया है। भारत के महकमे मौसमियात ने आइंदा 5 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, मगरबी बंगाल के गंगा के ताप, बिहार और झारखंड के इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई की है। और ICC मर्दों के T20 आलमी कप में अमरीका और भारत के दरमियान खेल जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।